அகண்டமண்டலாகாரம் வ்யாப்தம் யேன சராசரம் தத்பதம் தர்சிதம் யேன தஸ்மை ஸ்ரீ குருவே நமஹ. சங்கரம் சங்கராச்சாரியம் கேசவம் பாதராயணம் சூத்ர பாஷ்ய க்ருதௌ வந்தே பகவந்தௌ புனஹ புனஹ. ஈஸ்வரோ குருராத்மேதி மூர்த்தி பேத விபாகினே வ்யோமவத வ்யாப்த தேஹாய தக்ஷிணாமூர்த்தயே நமஹ. ஓம் சஹனாவவது சஹனௌ புனக்து சஹ வீரியம் கரவாவஹை தேஜஸ்வினாவதீதமஸ்து மா வித்விஷாவஹை. ஓம் சாந்தி சாந்தி சாந்தி. சத்குரு தேவ் மகாராஜ் ஜி கே சரணாரவிந்தோ கா தியான கர்கே ஹம் லோக் ஜோ உன்ஹி கீ கிருபா சே உன்ஹி கே த்வாரா ஹமாரே கோ பிரதத் மார்க் ஹை வேதாந்த சிந்தன கா ஹம் ஹர் ரோஜ் உன்கி தபஸ்தலி மே பேட் கர்கே உஸ்கா விசார் சிந்தன கர்தே ஹை உன்கா ஆசீர்வாத் பிராப்த ஹோதா ஹை ஹமாரே கோ உன்ஹி கீ கிருபா சே ஹி ஹம் லோக் ஜோ குச் கர் ரஹே ஹை சப் உன்ஹி கீ கிருபா திருஷ்டி சே ஹோ ரஹா ஹை. யே ஜோ வேதாந்த கா சிந்தன ஹை யே அப்னி பாத் பதாதா ஹை. ஜோ ஔர் சிந்தன ஹை நா லோக் கர்தே ஹை, சிந்தன தோ லோக் கர்தே ஹி ரஹதே ஹை, ஹம் லோக் பி கர்தே ஹை, லேகினா யஹான் பர் ஆகர்கே கேவல் அப்னி பாத் கா சிந்தன கர்தே ஹை. பாஹர் தோ ஹம் சம்சார் கா சிந்தன கர்தே ஹை, பூரா தின் கர்தே ரஹதே ஹை. ஏக யே ஸ்தான் ஐசா ஹை அத்வா ஔர் பி யஹான் லோக் மஹாத்மா லோக் சத்சங் கர்தே ஹை, வஹான் ஹம் லோகோ கோ குச் தேர் கே லியே அப்னி விசார் கர்னே கா சமய மில்தா ஹை. இஸ்லியே சத்சங் கி மஹிமா ஜோ ஹை உஸ்கா காயன் கர்தே ஹை சபி மஹாத்மா லோக் கி சத்சங் ஹி ஏக ஐசா ஹை யஹான் ஹமாரே கோ விவேக் கி ப்ராப்தி ஹோ சக்தி ஹை. பின் சத்சங் விவேக் நா ஹோயி ராம கிருபா பின் சுலப் நா சோயி. பினா சத்சங் கே விவேக் கி ப்ராப்தி நஹீ ஹோ சக்தி. சத்ய சத்ய வஸ்து விவேகா, விவேக கா அர்த்த ஹோதா ஹை கி சத்ய ஔர் அசத்ய கா விசார் கர்னா, சத்ய ஔர் அசத்ய கோ அலக் அலக் ஜானனா விவேக் ஹை. தோ விவேக் கி ப்ராப்தி சத்சங் மே ஹி ஹோதி ஹை. தோ யே சத்சங் ஹமாரே கோ படே பாக்ய சே ப்ராப்த ஹுவா ஹை. இஸ்கா பூரண லாப் ஜித்னா மே ஹம் உடா சக்தே ஹை உத்தனா ஹி உடானா சாஹியே. பாத் சல் ரஹி ஹை கி ஜோ பிரபஞ்ச ஹை நா இஸ்கா மித்யாத்வ கேசே ஜான் சக்தே ஹை ஹம். பிரபஞ்ச சபி லோக் பிரபஞ்ச கா அர்த்த ஹோதா ஜோ ஃபைலா ஹுவா ஹோதா ஹை. கஹதே நா ஆப்னே க்யா யஹான் பிரபஞ்ச பனா ரக்கா ஹை. பிரபஞ்ச கா அர்த்த ஹோதா ஆப்னே ஃபைலா ரக்கா ஹை பஹுத் குச். யே ஜோ ஃபைலா ஹுவா ஹமாரே கோ திகாயி தே ரஹா ஹை நா யே மித்யா ஹை. கஹதே ஹை மஹாத்மா லோக் பி கஹதே ஹை, கிரந்தகார் பி கஹதே ஹை கி யே மித்யா ஹை. லேகின் இஸ்கா ஹமாரே கோ நிச்சய நஹீ ஹோதா கி மித்யா ஹை. ஜான் பூஜ் கர்கே, ஜான் கர்கே பி ஹம் லோக் இஸ்கோ மித்யாத்வ நிச்சய நஹீ கர் பாதே. நிவிருத்தி இஸ்கி சாத்தே ஹை ஹம் லோக், லேகின் கேசே சாத்தே ஹை. நிவிருத்தி கஹதே ஹை கோயி ஹமாரே கோ கோயி பக்கடா தே இஸ்கி நிவிருத்தி கி, ஐசா தோ ஹோகா ஹி நஹீ. நிவிருத்தி பி சாத்தே ஹை, லேகின் சாத்தே ஹை கி கிசி மஹாத்மா கே பாஸ் ஜாயே, நமஸ்கார் கரே ஔர் ஹமாரே கோ நிவிருத்தி பக்கடா தே ஹாத் மே. தோ நிவிருத்தி ஐசே நஹீ ஹோகி. கிரந்தகார் கஹதே கி நிவிருத்தி தோ பிரகார் சே ஹோதி ஹை, ஏக கிரியாத்மக ஹோதி ஹை, தூசரி ஜ்ஞானாத்மக நிவிருத்தி ஹோதி ஹை. கிசி சீஜ் கோ ஹம்னே ஹட்டானா ஹை நா, தோ உஸ்கோ தோ பிரகார் சே ஹட்டா சக்தே ஹை, ஏக கிரியா சே ஔர் தூசரா ஜ்ஞான சே. ஜேசே கோயி சத்ய வஸ்து ஹோதி ஹை நா, மானோ ஏக சாம்ப் ஹை, சாம்ப் ஜோ சத்ய சாம்ப் ஹோதா ஹை, उसको यदि हमने निवृत्त करना है, हटाना है, तो वो बिना डंडे के उसको हम नहीं हटा सकते। उसको कहते रहो कि तुम चले जाओ चले जाओ चले जाओ, नहीं जाएगा। एक ज्ञान है ना कि तुम सर्प हो इसलिए तुम चले जाओ, तुम काट दोगे चले जाओ, लेकिन वो जाएगा नहीं, वो काटेगा आपको, क्योंकि वो सत्य है ना। सत्य की जो निवृत्ति है ना वो क्रिया से होती है, वो कभी भी ज्ञान से नहीं होती है। तो संसार कैसा है? ये संसार सत्य नहीं है, संसार सत्य नहीं ना महाराज जी। संसार सत्य हो तो उसको जैसे हम सर्प को डंडे से हटा सकते हैं ना, इसको भी हम भगा सकते हैं किसी चीज से, लेकिन अभी तक किसी ने भगाया नहीं है, किसी से नहीं भागा ये, क्योंकि सत्य नहीं है। सत्य वस्तु की जो निवृत्ति है ना उसको किया जाता है क्रिया से। घड़ा हमने फोड़ना है तो क्रिया से फोड़ देंगे, लेकिन जो रस्सी में सर्प है ना वो कभी डंडे से नहीं जाएगा। समझ में आ रही है आप लोगों के बात? एक वैसे सर्प होता है ना जो काटने वाला असली होता है, उसको कहते जाओ तुम चले जाओ तो नहीं जाएगा, वो कहेंगे भी ये सर्प मिथ्या है तो नहीं हटेगा, उसको आपको डंडे से भगाना पड़ेगा। लेकिन जो रात्रि को आपको रस्सी में सर्प भासता है ना, उसको डंडे मार के भगाते रहो, नहीं भागेगा वो। उसको कैसे भगाएंगे? उसको ज्ञान से भगाएंगे, वो ज्ञान से निवृत्त होता है। ज्ञान कैसे होता है उसका? हम टॉर्च लेकर के आएंगे या लाइट जलाएंगे तो हमारे को रस्सी का ज्ञान हो जाएगा, तो सर्प अपने आप हट जाएगा, क्योंकि वो सर्प था नहीं पहले, इसलिए ज्ञान से जिसमें वो भासता था उसका ज्ञान हो गया तो सर्प हट गया। तो संसार भी कहते हैं महात्मा लोग कि मिथ्या है, असत्य है, तो इसकी निवृत्ति हम लोग क्रिया से चाहते हैं। चाहते हैं कि नहीं? कर्म से चाहते ना हम लोग कि पूजा पाठ करेंगे, मतलब ध्यान करेंगे, भक्ति करेंगे। ये नहीं कि उससे होता नहीं है, होता तो उससे भी है, लेकिन उसके द्वारा हमारे को ज्ञान होता है संसार का। संसार हटता नहीं है ना कर्म से ना भक्ति से, परंपरा से, वो भी इसके कारण है, क्योंकि उसके द्वारा हमारे को ज्ञान होता है। तो हटेगा तो ज्ञान से ही। बहुत बार सुनते रहते हैं विरते ज्ञानान मुक्ति, सुनते रहते हैं हम लोग, लेकिन उसका महत्व समझ में नहीं आता कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती, क्योंकि जो कर्म है और भक्ति है ना वो क्रिया है, वो है ना स्वामी जी, वो दोनों क्रिया है। क्रिया से कभी भी मिथ्या वस्तु की निवृत्ति नहीं हो सकती, उसकी ज्ञान से होती है। तो लोग जहां पर ये बात तो बोलते रहते हैं, डंडोरा पीटते रहते हैं कि कर्म नहीं करना, भक्ति नहीं करनी, लेकिन क्यों नहीं करनी ये बात नहीं समझ में आती। ये बात जब समझ में आ जाएगी तब हमारे को पता चलेगा कि भक्ति करनी अच्छी बात है, कर्म करना अच्छी बात है, लेकिन मुक्ति हमारी बिना ज्ञान के नहीं होगी। जो कर्म है और भक्ति है ये ज्ञान में सहायक है, और ज्ञान साक्षात जो है वो मुक्ति का, मोक्ष का कारण है, ये परंपरा से कारण है कर्म और भक्ति। तो कर्म से क्या दूर होता है? जब हमने कहा क्रिया से जो सत्य वस्तु होता उसका नाश होता है, यहां पर उल्टा है। जो ज्ञान हमारे को अपने स्वरूप का ज्ञान करना ना, हमने इसमें क्रिया की जरूरत नहीं है, इसके लिए क्रिया नहीं चाहिए कोई भी। जब तक क्रिया करेंगे तब तक मोक्ष नहीं हो सकता, क्योंकि क्रिया होती कर्म होता है द्वैत में, एकता में कर्म नहीं होता, किसी दूसरी चीज को मान के कर्म होता है ना। हमने कोई चीज बनानी है, घड़ा बनाना है, गाड़ी बनानी, कुछ भी बनाना, तो द्वैत रहेगी ना। अथवा भक्ति करनी, तो भक्ति के लिए हमारे को कोई सामने चिन्ह चाहिए जिसको हमने मान के भक्ति करनी। तो जब तक हमारे सामने दूसरा रहेगा तो द्वैत रहेगी। तो द्वितीयाद भाई भयम भक्ति, श्रुति कहती है कि दूसरे से भय होता है, अपने से भय किसी को नहीं होता कभी भी, भय होता ही दूसरे से है। कभी भी एक आदमी को, अकेले को अपने से भय नहीं होता, होता भले हमारे को बैठे हुए अकेले को भय होता है, लेकिन तब भी किसी दूसरे को मान के होता है। अपने आप से कभी कोई डरता नहीं है, दूसरे से डरता है। जब तक दूसरा है तब तक भय है। द्वितीयाद भई भयम भवती, एक में भय कभी नहीं होता। तो बात क्या होगी? हम लोग संसार की निवृत्ति तो चाहते हैं लेकिन क्रिया से चाहते हैं। क्रिया से होगी नहीं, क्रिया से तो आप संसार की वस्तुओं को हटा सकते हैं, जो सत्य जिनको आप मान रहे हैं। संसार जब हट जाएगा ना ज्ञान से तो जाएगा थोड़ी कहीं, ये भी बात है। जैसे हमने सर्प को भगा दिया डंडे से, संसार को भगा सकते हैं क्या? जो कोई ब्रह्म ज्ञानी हो जाएगा वो संसार को जहां से भगा देगा क्या? कहीं नहीं भगाता है वो, क्योंकि भागने वाला है ही नहीं, है ना, भागेगा ही नहीं। डंडे से तो हट नहीं सकता ना, क्रिया से तो हटेगा ही नहीं, ये क्रिया तो उसको करनी ही पड़ेगी। जब तक क्रिया करता रहेगा तो संसार रहेगा। जब ज्ञान से संसार को हटाने का अर्थ क्या होता है कि संसार का मिथ्या का निश्चय हो जाता है, संसार जाता कहीं नहीं है, वहीं का वहीं रहता है। उसमें अंदर जो आसक्ति है वो ज्ञान से हट जाती है। हमारे को संसार से हटने का, लोग कहते ना कि महात्मा डंडोरा पीटते हैं कि घर बार नहीं छोड़, घर बार छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, ये कुछ नहीं होता। हम ही कहते हैं कि घर बार छोड़ने से कुछ नहीं मिलता, घर बार नहीं छोड़ना चाहिए। जिसकी यहाँ भगवान ने, जिसकी प्रारब्ध जहाँ है उसको वहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन पहले भी हमने एक दिन बात की थी कि महाराज जी गुरु गोविंद सिंह जी कहते हैं कि तुम घर में रहो, हम कब कहते तुम घर छोड़ के जाओ। लेकिन घर में रहना तो सीखो कैसे रहा जाता है। घर में आपको रहना आ जाए तो घर में ही रहो। यदि किसी को नहीं घर में रहना आता तो उसको कहा जाता है तुम घर छोड़ दो, जब आपकी वहां नहीं पड़ती तो चले जाओ वहां से। यही होता ना, जब पड़ती है
छोड़न जाई।
हाँ, कहते हैं कि क्यों काहे रे बन खोजन जाई, क्यों जाता है मन में, क्योंकि घर में मिलता नहीं उसको, क्यों नहीं मिलता है। वैसे तो कबीर जी कहते हैं जंगल जंगल क्या ढूंढे, जंगल जंगल में क्या, वन कंडा मोड़े है, वनों में झाड़ियों में तुम घूम रहे हो, किसको ढूंढते हो। एक एक बात और कबीर जी ने कही भी, देख देख जग ढूंढिया कहूं ना पाया ठौर। पूरा संसार मैंने घूम के देख लिया, मेरे को कहीं तसल्ली नहीं हुई मेरी। कबीर जाको खोजते पायो सोई ठौर, जिसको मैं ढूंढ रहा था ना पूरे संसार में वहीं पाया मैंने, यहां था घूम करके मेरे को वहीं आना पड़ा। पूरा घूम के देख लिया, कहीं से मिला ही नहीं है। जाको खोजते पायो सोई ठौर।
इसमें और सुंदर उन्होंने भी जो कहा वो गुंजल कही।
हाँ जी,
और उसकी खोल लो।
हाँ हाँ हाँ, नहीं बताइए आप बताइए।
नहीं जी, कहा है ना काहे रे बन खोजन जाई।
हाँ जी,
सर्व निवासी सदा लेपा तो है संग सुमाई। हाँ जी, ये तो गुंजल है।
हाँ गुंजल तो है, वही तो कह रहा, वही तो कह रहा हूँ ना कि गुंजल है ना। महाराज जी ने कहा कि आप जीने की जांच सीख लो, जीने का ढंग आपको आ जाए तो आपको घर में मिल जाएगा। जब आपको जीना नहीं आता तब आप आत्महत्या करते हैं, ऐसे थोड़ी करते हैं। जीना जिसको नहीं आता वो आत्महत्या करता है, जिसको जीना आता है वो तो आनंद लेता है। जीना नहीं हम लोगों को आता तभी हम आत्महत्या करते हैं। आत्महत्या कभी हो नहीं सकती, ये भी बात है। आत्म की हत्या कोई नहीं कर सकता, ना हम कर सकते हैं ना दूसरा कोई कर सकता है। हम कहते हैं कि आत्महत्या की है उस आदमी ने, आत्म की हत्या हो ही नहीं सकती। ना जायते मृियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूआ, ये कृष्ण भगवान का संदेश है कि ना ये कभी आता है ना जाता है ना मरता है, ना इसको शास्त्र काट सकता है, ना इसको पानी डुबो सकता है, ना इसको अग्नि जला सकती है। तो उसको कैसे हम कहेंगे कि आत्महत्या की हमने, हमने शरीर की हत्या की, आत्म की नहीं की है। शरीर की हत्या किस लिए की हम लोगों ने? जो आत्महत्या करता है वो क्या सोचता है? वो कहता है कि ये शरीर छूटने से मैं सुखी हो जाऊं। तो जब आत्महत्या होगी तो सुखी कहां से होगा वो? इसका मतलब शरीर को छोड़ के कहीं सुख लेना चाहता है ना, तो उसने शरीर को समाप्त करने के लिए सोचा है, अपने आप को उसने सोचा नहीं समाप्त करने के लिए। तो शरीर को छोड़ करके कहता है कि मैं सुखी हो जाऊंगा, उसने शरीर को मारने की कोशिश की है, मारा है शरीर को, मारा उसने अपने आप को, तो कहता शरीर के बाद में कहीं सुख मिलेगा। यदि उसने अपने आप को मारने के लिए सोचा था तो उसको और सुख कौन सा चाहिए था? ये तो आप भी जानते हैं ना, वो आदमी लिख के जाता है कि मैं दुखी हूं इसलिए मैं जा रहा हूं, इसलिए मैं इस शरीर को समाप्त कर रहा हूं। तो कहीं ना कहीं इसे आगे जाना चाहता है ना, उसको सुख कहीं ना कहीं सुख लगता है कि इससे आगे मेरे को कहीं सुख मिलेगा। इसका मतलब हुआ भी आत्मा की हत्या होती नहीं है, उसने तो शरीर को समाप्त किया है, फिर भी वो जानता नहीं है। शरीर को समाप्त कर रहा तब भी जानता नहीं है, वो कहता मैं अपने आप को समाप्त कर रहा हूं। तो अपने आप को समाप्त करके और कहां जाना चाहता है? इसका मतलब ये है कि सीधी सीधी बात है, मोटी सी की आत्मा की हत्या होती नहीं, हम समझ ही नहीं पाते। कोई आदमी जब इतना ज्यादा दुखी हो जाता है ना अपने शरीर से, अपने इंद्रियों से, उसको मानो किसी को कैंसर हो जाती है, किसी को कुष्ठ हो जाता है, तो वो स्वयं हमारे को कहता है कि हमारा शरीर कैसे छूटे, ऐसा कोई उपाय करो। कहता है कि नहीं कहता है कि मेरा शरीर जो है कैसे छूट जाए, मेरा कोई ऐसा कोई उपाय करो। तो शरीर को छुड़ाना चाहता है, शरीर से आगे कहीं जाना चाहता है। उसको लगता है कि ये शरीर मेरे को दुखी कर रहा है, इसलिए इसको छुड़ाना चाहता है ना। जैसे उसको पहले लगता है कि मेरे को फलाना आदमी दुखी करता, अब उसको लगता है कि मेरे को शरीर दुखी करता है, यदि शरीर मेरे साथ नहीं रहेगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, इसलिए कहता कि इसको छुड़ाओ, जैसे कैसे छुड़ाओ। तो इतना उसको ज्ञान तो है, लेकिन सामान्य ज्ञान है, ज्ञान है उसको भी शरीर यदि मेरे से अलग हो जाएगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन पहले उसको ऐसा था कि पहले शरीर से चिपका हुआ था वो, पहले इसको बचाने की कोशिश भी बहुत की उसने, पहले उसको इसमें सुख लगता था कि ये यदि बचा रहेगा तो मैं सुखी रहूंगा। अब उसको लगा कि नहीं, इसके रहने से भी मैं सुखी नहीं हो सकता, इसलिए अब इसको भी छोड़ना चाहता है। तो ज्ञान तो है ना उसको कि शरीर यदि शरीर ही मेरे को दुख दे रहा है, यदि ये हट जाए तो मैं सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इसका इतना यदि चिंतन से ज्ञान हुआ होता ना उसको, तब ऐसा नहीं होता। अब उसको दुख के कारण हुआ है ऐसे नहीं, उसको यदि चिंतन से उसने विचार किया तब ये शरीर मैं नहीं हूं, तब वो छोड़ने की कोशिश नहीं करता, तब इसमें रहते हुए आनंद लेता है, उसको जीवन मुक्त कहते हैं। अब तो वो रोग से दुखी है ना, इसलिए वो कहता है कि शरीर जो है इसको छोड़ के और कहीं रहूंगा तो सुख मिलेगा। ऐसे ही हम लोग पूरी जिंदगी जो है ना उसको एक वस्तु को छोड़ के दूसरी पकड़ते हैं, दूसरी को छोड़ के तीसरी पकड़ते हैं, हमारे को लगता है क्योंकि जो चीज पकड़ते हैं उसमें कुछ देर के लिए सुख मिलता है, फिर वही दुखी दुख देती है। रसगुल्ला खाते हैं ना, पहले पहले बड़ा आनंद आता है, जब चार दिन लगातार रसगुल्ला दे दो तो फिर क्या होता है, फिर रसगुल्ला तो वही है, उसमें से रस थोड़ी खत्म हुआ। हम क्यों दुखी हैं, चार दिन गोभी किसी को खिला दो तो गाली निकालने लगता है, तो पहले उसको एक महीना दो महीने नहीं गोभी मिलती तो भाग के जाता भी आज गोभी बनी है, तो बात क्या हुई, विषय में सुख थोड़ी है, विषय में सुख नहीं है। सुख तो उसको तब होता जब विषय की प्राप्ति हो जाती, तो उसकी वृत्ति जो है ना क्षण मात्र के लिए टिक जाती है, तो अपना ही आनंद लेता है। जैसे कुत्ता हड्डी चबाता है ना, कुत्ता हड्डी चबाता है, चबाता ही रहता है, हड्डी में कभी भी खून नहीं होता, ये तो आपने भी देखा, हड्डी में खून नहीं होता कभी भी, लेकिन कुत्ते को लगता है कि हड्डी से खून निकल रहा है, खून तो उसके जबाड़ों से निकलता है हड्डी के कारण, और आनंद तो अपने खून का ही ले रहा है, उसको मालूम नहीं, उसको लगता है हड्डी में है, चबाता ही जाएगा उसको, इसलिए उसको अध्यास हो गया वहां कि हड्डी में खून है, खून तो उसके अपने अंदर से निकल रहा है, मृग दौड़ता रहता है, उसको ना उसकी नाभि में कस्तूरी है ना, तो दौड़ता रहता दौड़ता दौड़ता मर ही जाता है कि कहीं और कहीं होगी, जो सुगंधी आती है ना वो कहता कि कहीं और होगी, है तो उसके अंदर है, ज्यों कस्तूरी मृग ना जाने भ्रम दा भ्रम पलाया। कहते हैं गुरु महाराज कि जैसे वो कस्तूरी की सुगंधी जो आ रही है ना उसको जानता नहीं है, भ्रम दा भ्रम भुलाया, इस प्रकार हमारी हालत हो रही है। गर्मी घर ही में अमृत भरपूर है, मनमुखा साध ना पाया, जो मनमुख है ना उनके घर में कहते खजाना है, अमृत है उनके अंदर, लेकिन उनको स्वाद नहीं आता। स्वाद इसलिए नहीं आता कि कहीं ना कहीं का स्वाद वो ले रहे हैं, स्वाद तो एक समय एक ही आएगा ना, स्वाद तो ले रहे हैं हम लोग, संसार के विषयों का स्वाद ले रहे हैं, तो जब तक हमारे को स्वाद आ रहा है ना कहीं से, एक ही आएगा दूसरा थोड़ी आएगा। कबीर साहब जी महाराज कहते हैं कि एह रस छाड़े ओह रस आवा, ओह रस पिया एह रस नहीं पावा। वो कहते हैं यदि एह रस जो है ना संसार का रस इसको छोड़ोगे तो ओह रस आवा, तब आपको ओह रस आएगा। एह और ओह से ही गड़बड़ हो जाता है ना, एह का अर्थ है इदम, जो सामने है आपके एह रस छोड़ दो, इदम इदम का मतलब जो सामने है उसको छोड़ दो, तो ओह का मतलब क्या होता है, जो सामने नहीं है, ओह का अर्थ होता है जो हमारे सामने नहीं है, वो फलाना आदमी, ओह का अर्थ हमारे सामने नहीं है अभी, एक अर्थ होता जो सामने है, तो हमारा अपना आप है जो है ना, उसको हम अहम से कहते हैं मैं हूं, दूसरे को कहते हैं यह है, यह और वह ही तो चल रहा है गड़बड़। यह और वह दोनों ही है, यह है और वह है, इसी में हम लोग गड़बड़ा जाते हैं। ना हम यह हैं ना हम वह हैं, हम क्या हैं, मैं हूं। यह और वह दोनों में हमारी जिंदगी बीत जाती है ना, और यह वह दोनों को छोड़ेंगे तो फिर तीसरा मैं हूं। तो हम तो यह और वह में ही रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं कि एह रस साडे ओह रस आवा, ओह का अर्थ है जो परोक्ष है, प्रत्यक्ष नहीं है। इतना तो आप जानते हैं कि वो है। हम कहते ना कभी कभी बैठे बैठे ऐसे करते हैं, ऐसे ऊपर को भी करते हैं ना। ऊपर क्या है, बैठे बैठे ऊपर को कहते हैं भगवान। कहाँ भगवान, ऊपर कहाँ खड़ा है। खिलाड़ी लोगों को देखा आपने जो मैच खेलते हैं, जब उनका कहीं शतक पूरा होता है तो अपना ऊपर जो टॉप होता है उसको उतार के तो ऐसे करते हैं। क्या करते हैं वो, ऊपर क्या है, करते हैं ना महाराज जी, ऊपर को करते हैं या नीचे माथा टेकते हैं। तो उनको इतना वो ब्रह्म ज्ञानी है क्या कि उनको सब जगह परमात्मा दिखता, ऊपर को देख रहे हैं। वो निष्ठा है ना कि ऊपर है कहीं, तो ऊपर कहाँ है। एक निष्ठा है कि भगवान है कहीं ना कहीं, ऊपर को कहते हैं कि ऊपर मतलब सबसे ऊंचा है वो, इसलिए ऊपर करते हैं कि हम लोगों से वो श्रेष्ठ है, ऊपर है, ऊंचा है, परे है, वह है ना, यह नहीं है वह है, इसलिए वो वह को देखते हैं ऊपर, जो सबसे परे है। इतना उन लोगों को भी ज्ञान है कि वो है परे, लेकिन उनको ये ज्ञान जो है चिंतन से नहीं हुआ। इतना सुन रखा है केवल, इतना मान रखा है कि हम सेवक हैं, वो स्वामी है, स्वामी जो है सेवक से बड़ा होता है, ये उनको मालूम है। ये नहीं मालूम कि सेवक और स्वामी दोनों एक होते हैं, आत्म रूप में एक होते हैं। सेवक स्वामी भाव मिटता है जब आत्मा का चिंतन करते हैं। ये संपूर्ण अध्यास की परिभाषा चल रही है कि ये अध्यास मतलब हमारे को भ्रम हो गया। बात यह चल रही है कि नहीं जो जाहि में तीन काल में, जो वस्तु जिसमें तीनों कालों में ही नहीं है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है आपको, कागज भासता है, अभ्रक भासता है, वो सीपी में तीनों कालों में ही नहीं है। सीपी में चांदी कभी हो ही नहीं सकती, ना पहले थी ना अब है ना बाद में रहेगी। जो वस्तु जिसमें तीनों कालों में ही नहीं ना, कहते हैं कि तही भान हुए मध्य काल में।